शांति। सवेरे हम इस पॉइंट को चर्चा कर रहे थे कि रिसर्च का रिपोर्ट, जब आपने क्वेश्चनर बना ली, उत्तर फाइंड आउट कर लिए, एनालाइज कर लिया, फिर उन्हें जब आप लिखना शुरू करते हैं तो रिपोर्ट लिखना मतलब विभिन्न जो आइडियाज आपको आ रहे हैं उन आइडियाज को ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना। जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको एक जगह एक शब्द मिलेगा कि पहले चैप्टर का लास्ट चैप्टर के साथ भी कनेक्शन हो, सेकंड चैप्टर का भी लास्ट चैप्टर के साथ कनेक्शन हो। तो जब आपस में एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा, ऐसे जब आपस में जब लिंक होगी तो इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। यदि विभिन्न माला के मणकों की तरह बिखरे हुए आइडियाज हैं तो वो राइट नहीं रहता। रीडर्स कैन इजीली ग्रास्प द कॉन्टेक्स्ट, मेथोडोलॉजी एंड फाइंडिंग्स। आप क्या करना चाहते, किस तरह आपने रिसर्च किया, या आप इतना एक्सप्रेस करे क्लियरली ताकि रीडर्स को उसके बारे में जब पढ़ता है तो आपने इसमें क्या क्या फाइंडिंग्स किए हैं, कैसे कैसे किए हैं, किस मेथड को किस कॉन्टेक्स्ट में उपयोग किया है, तो हर बात का अर्थ उसमें से निकले, समझ आए, पढ़ने वाले को समझ आए। जहां आपकी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होगी वहां वो भी स्पष्ट नजर आएगा। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिपोर्ट, टू नो फैक्टर्स इन द राइटिंग स्टाइल, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, कंटेंट्स एंड इवेल्युएशन ऑफ गुड रिपोर्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिब्लियोग्राफी। वैसे इसमें तीन स्टेजेस होती है रिपोर्ट राइटिंग की, ऑर्गेनाइजेशन, राइटअप, डॉक्यूमेंटेशन, यहां चौथी भी लिखी है कोटेशंस। तो डॉक्यूमेंटेशन अपने किताब में ब्रीफ में बताया है कि उसमें आप फुटनोट्स लिख सकते हैं, टिप्पणी जिसको आप कहते हो, आपकी सारिणी या टेबल्स, प्रीफेस, एपेंडिसेस, बिब्लियोग्राफी, चार्ट, ये जो आप टूल्स आपने जहां जहां से मटेरियल आपने डेटा इकट्ठे किए हैं उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उसका बेस क्या है, कहां से आपने ये बात लिखी है, वो इन बिब्लियोग्राफी के जिसमें आपने रेफरेंस दिया हुआ है उसके आधार से आपका रिपोर्ट वैलिड माना जाएगा। अगर आपने किसी के कोटेशंस लिखे हैं वो भी कौन है, कहां से है, उसका भी आपको संदर्भ कॉन्टेक्स्ट देना चाहिए। अब पहला जो था ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, स्टेजेस में, तो उसको अभी देखते हैं। ब्रॉड फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तीन है। फर्स्ट है द टॉपिकल अप्रोच, इट रिफर्स टू इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स। द टाइटल इटसेल्फ शेज द मीनिंग, टॉपिकल यानी टॉपिक वाइज ऑर्गेनाइजेशन करना अपने रिसर्च रिपोर्ट का। दूसरा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्रोनोलॉजी को क्या कहते हैं, डेट वाइज, ईयर वाइज, है ना, तो ऐतिहासिक संदर्भ से जब आप अपने इसको रिसर्च को लिखते हैं। अगर आपका रिसर्च ऐतिहासिक विषय का है तो उसमें कौन सी मेथड लागू होगी, ऑर्गेनाइजेशन की, क्रोनोलॉजिकल, अन्यथा टॉपिक वाली। और कई जगह आप इन दोनों को मिक्स करके मिक्स्ड फॉर्म में भी कभी कभी आप अपना रिपोर्ट लिखना शुरू कर सकते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिपोर्ट, जिसमें टू प्लान द फाउंडेशन, द स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट राइटिंग फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ रिपोर्ट। मूल बात जो है, बेस, बीज, क्या है आपके रिपोर्ट का, क्या है फाउंडेशन, क्या है, फिर आप किस ढांचे में अपनी मैटर को सुव्यवस्थित करके प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो आपका स्ट्रक्चर बनता है। ताकि आपके द्वारा जो बोला गया है, रिपोर्ट में लिखा गया है, वो कम्युनिकेशन कुछ नतीजा, कुछ रिजल्ट दिखाए, पाठक को आप एक दिशा, मंजिल तक ले जाते हो, और मंजिल पर जाकर उसे कुछ प्राप्त होना चाहिए। तो आपका जो रिजल्ट है रिपोर्ट का, वहां तक पहुंचने में आप जिन जिन प्रक्रियाओं से, जिन जिन प्रोसेस से गुजरे हैं, वो प्रोसेसेस आपको ऑर्गेनाइज्ड करने होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखने हैं। जो बात चौथे चैप्टर में लिखनी है आपने दो चैप्टर में लिखी, और सेकंड चैप्टर में लिखनी है वो आपने थर्ड चैप्टर में लिखी, तो इसको ऑर्गेनाइजिंग कहेंगे। तो पहला अटेम्प्ट जब आप लिखना शुरू करेंगे रिपोर्ट का, तो आपके ऐसे ही कुछ पैराग्राफ्स और ऐसे ही कुछ चैप्टर्स बनेंगे। जो पहले लिखना था वो पीछे लिखा है, जो पीछे लिखना था वो बीच में लिखा है, कोई हर्ज नहीं, निराश नहीं होना। ऐसे तो ऐसे, पर पहला अटेम्प्ट एक बार लिखना शुरू करना। फिर आप उसको शांति से जब पढ़ेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि अगर ये किसी पाठक को मैं पढ़ने दूं, रीडर को, तो उसको कैसा समझ में आएगा, तो आपको भी समझ में, नहीं नहीं ये बात ऐसे नहीं, ऐसे लिखनी चाहिए, तो आप उसको सही जगह पर फिर ट्रांसफर करना। और अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं कंप्यूटर पर, तो उसमें भी आप रीचेंज पैराग्राफ, शिफ्टिंग भी कर सकते हैं। पर ठोस पहली बार तो आपको लिखने का अपने हाथ से अभ्यास करना ही होगा, ठीक है। दूसरी बात, फॉर दिस पर्पज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डेटा। किसको कहेंगे ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डेटा? जिन डेटा को के आधार से दूसरे डेटा लिंक्ड है, उस दूसरे डेटा के आधार से फिर तीसरे डेटा लिंक्ड है, तो जो पहले लिखने हैं वो पहले ही लिखने हैं। अब इसमें हमें अपनी टेक्स्ट बुक गाइड करती है कि एक बार आपने टेबल और डेटा एक बार प्रिपेयर कर लिए हैं, मानो एक अलग पेपर में उसको आपने एक बार ठीक ठाक कर लिए हैं, तो बार बार उसको रिपीट नहीं करने हैं, पर आपके जो पैराग्राफ है, जो आपका एक्सप्लेनेशन है, उसको आपको बार बार क्या करना होगा, रिवाइज करके चेंज करना होगा। तो एवरी टाइम, मानो थ्री टाइम आप ड्राफ्ट लिखते हैं रिपोर्ट का, कच्चा रिपोर्ट, ड्राफ्ट किसको कहते हैं, कच्चा रिपोर्ट, थ्री टाइम्स लिखते हैं, तो थ्री के थ्री टाइम्स टेबल भी लिखेंगे, प्रश्नावली भी लिखेंगे, नो नीड। प्रश्नावली वही की वही है, टेबल वही के वही है, चार्ट वही के वही है, ग्राफ, तो तीन बार आपको ग्राफ नहीं ड्रॉ करने हैं, ठीक है। उनको एक बार करके आप साइड में उन पन्नों को रख दो, और उन पन्नों को जहां जहां फिट बैठते, या किसी के फोटोग्राफ्स है मानो, तो वो फिट बैठते, वो वहां वहां पर आप पिन से जोड़ दो। बाकी जो लिखत आपकी है उसमें तो आपको चेंजेस आगे पीछे करते, ठीक है। टाइम निकालेंगे रिपोर्ट लिखने में, क्योंकि लास्ट मॉन्यूमेंट जब आप लोगों को वो देना होगा, सबमिट करना होगा, अगर उस समय लिखना शुरू करोगे तो इतना शांति से सोच करके बुद्धिपूर्वक प्लानिंग से कर नहीं पाओगे, अभी से लिखना शुरू करो, ठीक है। इन ऑल पार्ट्स ऑफ रिपोर्ट यूनिटी कोहियरेंस एंड फ्लो इन राइटिंग, ये बहुत जरूरी है। लिंक हो, ये एक वस्तु है चश्मे, इसमें लिंक है, यूनिटी है, एक पार्ट दूसरे पार्ट से कोहियर्ड है। अगर इनमें कोई भी ऊपर नीचे आपने फिट कर दिया, इसका कोई भी पुर्जा ऊपर नीचे आगे पीछे फिट कर दिया, आपको उपयोगी होगा? तो आपका जो रिसर्च रिपोर्ट है उसके प्रेजेंटेशन में यूनिटी चाहिए। यदि इस किताब को बनाने वाले ने पांचवा चैप्टर पहले लिख लिया होता तो क्या होता? जब मटेरियल ही तैयार नहीं किया और आप पहले हमें सिखा रहे हो कि रिपोर्ट तैयार लिखो, तो पांचवें नंबर पर ही पांचवा टॉपिक, इसको कहते हैं यूनिटी। कि जब आपने कुछ रिसर्च काम शुरू किया है, क्वेश्चनेयर बनाई है, हाइपोथेसिस बनाया है, उसका एनालिसिस किया है, उसको इंटरप्रेट किया है, उसके बाद जाकर के कुछ निष्कर्ष निकला है, तब आप रिपोर्ट राइटिंग, है ना। इसलिए पांचवे नंबर में इसको मिला ना स्थान इस किताब में, इस चैप्टर को कुछ है? ऐसे आपके रिपोर्ट का भी उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। गुप्ता भाई ने आपसे डिटेल में डेजर्टेशन का डिस्कस किया हुआ है। फैक्ट्स एंड कंक्लूजन शुड फॉलो वन अनदर थ्रू सीक्वेंस एंड नेचुरल क्लस्टर ऑफ आइडियाज। बहुत सुंदर बात बताइए, सीक्वेंस में हो, आपस में एक दूसरे के साथ उन बातों का, जो बातें आप व्यक्त कर रहे हैं वो संबंध हो, और नेचुरली वो आइडियाज दिखने चाहिए। ये नहीं वो बड़े बड़े भारी शब्द आपने इकट्ठे करके रख दिए हैं, जोड़ करके रख दिए हैं, नहीं। ये पढ़ते समय हम लोगों को तुरंत ध्यान में आता है कि क्या चल रहा है आपका लिखत में। फैक्टर्स ऑफ क्लैरिटी राइटअप में रीडर्स टेक्निकलिटी ऑफ द प्रॉब्लम, होल्ड ओवर फैक्ट्स, कमांड ओवर लैंग्वेज एंड रिलायबिलिटी। रीडर समझ सके इस भाषा में लिखो। आपकी बहुत इंग्लिश हाई है और आपको बहुत अच्छे अच्छे शब्द आपकी मातृभाषा के आ रहे हैं, तो इंप्रेस करने के लिए आपने भारी भारी शब्दों का कलेक्शन करके उसमें रिपोर्ट लिख दिया, इट इज नॉट ए रिपोर्ट। अगर आपका विषय टेक्निकल रिलेटेड है, टेक्निकल सब्जेक्ट के रिलेटेड है, तो वैसी भाषा में आपको रिपोर्ट लिखना है। और अगर आपका रिपोर्ट एक सामान्य जनता पढ़ने वाली है, तो फिर आप टेक्निकल शब्दों का उपयोग करके रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। तो चेक कि व्हाट इज योर सब्जेक्ट, होल्ड ओवर द फैक्ट्स, उसमें क्या हो, फैक्ट्स बताए गए हो, कमांड ओवर लैंग्वेज, आपकी शैली पर भी कमांड हो, एवं रिलायबिलिटी हो, विश्वसनीयता हो, जिस पर हम आधार रख सके, विश्वास कर सके। ड्राफ्टिंग, उसमें स्टेप्स, कॉन्सेंट्रेट्स ऑन सब्सटेंस, फुलनेस, एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स। ठोस बातें हो उसमें, सब्सटेंस हो, ऊपर ऊपर के सुपरफ्लुअस आइडियाज आप लिख करके रिपोर्ट पूरा कर दिया, काम पूरा कर दिया, नहीं, सॉलिड और गहरी बातें हो, सब्सटेंस हो उसमें, कुछ फुलनेस हो, उस विषय के बारे में सारी बातें आपने उसमें शामिल की हुई हो, और फैक्ट्स सच्ची हो, एक्यूरेट हो। अ बैलेंस, अ प्रोपोर्शन डेवलपमेंट इन फैक्ट्स, फैक्ट्स में भी बैलेंस हो, वृद्धि हो। इंपॉर्टेंस टू कॉम्प्रिहेंसिवनेस फॉर्म लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्ट, कॉम्प्रिहेंसिव हो, सब एस्पेक्ट को कवर करता हुआ रिपोर्ट लिखना चाहिए। रिपोर्ट्स इज टू बी रीरिटन, कंटिन्यूअस रीथिंकिंग ओवर द प्रॉब्लम, बार बार लिखिए, पुनः पुनः विचार कीजिए, फिर दोबारा करेक्शन करिए, चेंज कीजिए, फिर से लिखिए, थ्री टाइम्स ड्राफ्टिंग ऑफ द रिपोर्ट. फर्स्ट ड्राफ्ट कवर्स थ्री पर्पजेस, टू मेक क्लियर कनेक्शंस बिटवीन कलेक्टेड मटेरियल, सेटिस्फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड फुलनेस ऑफ द फैक्ट्स. कनेक्टिंग लिंक जोड़े, फर्स्ट ड्राफ्ट जो जो मटेरियल आपने इकट्ठा किया उसको एसिमिलेट करना. आप कहते हो ना असेंबल कार है, क्या कहते हो ये, पार्ट्स को असेंबल किया है. वैसे आपका जो मटेरियल आपने कलेक्ट किया रिसर्च के लिए अब तक, उनको क्या करोगे आप, कनेक्शन उसका आपस में जोड़ करके फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार करोगे. इसमें ये जो सेकंड पॉइंट है, कृपया आप सभी ध्यान दें इस पॉइंट को. लैंग्वेज पहली ड्राफ्ट में चाहे कैसी भी हो, डोंट वरी अबाउट इट. सेकंड ड्राफ्ट में आप लैंग्वेज पर आना, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इस पर सेकंड ड्राफ्ट में आना. फर्स्ट ड्राफ्ट में जिस भी रीति से आप लिखते कोई अर्ज नहीं, पर फर्स्ट ड्राफ्ट में आप क्या दोगे, आकार, शेप, कि मूल में क्या कहना चाहता हूं, मेरा रिपोर्ट किस बारे में है, उस विषय के गहराई को आप अभिव्यक्त करेंगे फर्स्ट ड्राफ्ट में. इसको कहते हैं राइट द बॉडी देन द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन बॉडी के आधार से आपका इंट्रोडक्शन आएगा. इंट्रोडक्शन बाद में लिखा जाएगा, पहले मेन सब्सटेंस आप तैयार करें. इट इज द क्रूशियल पार्ट, द सब्सटेंस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, कि आपने क्या इन्वेस्टिगेट किया है उसका मेन गहराई बताएं. टेबल्स चार्ट शुड बी कैप्ट असाइड व्हाइल रिवाइजिंग फर्स्ट एंड सेकंड ड्राफ्टिंग. कंक्लूजन शुड बी प्रिसाइज एंड क्लियर. सेकंड ड्राफ्ट टू गिव शेप टू द फर्स्ट ड्राफ्ट, फोकस ऑन फॉर्म एंड लैंग्वेज. डू एडिटिंग टू मेक राइटिंग प्रिसाइज, कंसाइज एंड ब्रीफ. बहुत कुछ कह डालो थोड़े शब्दों में, थोड़ा कहते हो पर अनेक शब्दों में और अनेक सेंटेंस में और अनेक पेजेस में, इट इज नॉट रिपोर्ट राइटिंग. हाँ मेरे पेज तो हो गए ना, 10 पेज हो गए ना, 50 पेज हो गए ना, 100 पेज हो गए ना. आप लोग कैसे जाते हो पता है रिपोर्ट राइटिंग में, 200 पेज का होना चाहिए ना, मैंने 200 पेज का, पर 200 पेज में तुमने दिया क्या है, लिखा क्या है, क्वालिटी क्या दी है, पेज की साइज देख करके मार्क्स या क्वालिटी रिपोर्ट की नहीं जांची जाती. रिपोर्ट की क्वालिटी आपके सब्सटेंस, आपने क्या प्रिसाइजली बट बहुत गहरी बातें उसमें बताई. बाबा जैसे अव्यक्त बाबा बहुत कुछ कहते हैं पर थोड़े शब्दों में, सूक्ष्मता से कहते हैं, गहरी बातें पर सूक्ष्मता से, ज्यादा लंबे चौड़े भाषण नहीं है बाबा के, ऐसी आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए. क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ रिटर्न फैक्ट्स, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस. ठीक है, टू पुट ह्यूमन इंटरेस्ट इन टू द रिपोर्ट, टू चेक यूज ऑफ सिनोनिमस वर्ड्स, ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस. अपनी किताब में ये दो सिनोनिमस वर्ड, तो आपके लैंग्वेज में अगर दो सिनोनिमस वर्ड आते हैं तो सामने वाला क्या अर्थ ले उसका, ऑटोनॉमी का क्या ले, इंडिपेंडेंस का क्या ले, जो मिले जुले शब्द होते हैं. डज द टाइटल कवर द स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट. आपने रिसर्च का जो टाइटल दिया है उस विषय के स्कोप को कवर कर रहा है या आपका आउट ऑफ द स्कोप है. इज द इनिशियल हाइपोथेसिस टेस्टेड एडिक्वेटली, बरोबर एडिक्वेटली आपने उसको टेस्ट किया. डज बिगिनिंग बिगिन एंड कंक्लूजन कंक्लूड. जैसी बिगिनिंग होनी चाहिए रिपोर्ट की वैसी है, वैसा कंक्लूजन है आपका. इज देयर स्मूथ डेवलपमेंट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ द रिकमेंडेशंस. जो आपने सुझाव दिए क्या उसके अनुसार आपका रिपोर्ट गतिशील हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है उसमें. नॉट टू यूज वर्ड्स ऑफ इनडिसीजन, ऐसे शब्द नहीं यूज कर सकते रिसर्च में, परहैप्स, समवॉट, जिसमें अनसर्टेनिटी है. इसी तरह आगे इसमें आएगा पर मैं अभी बता देती हूं, मैं ऐसे समझता हूं, मुझे ऐसा लगता है, मेरे ओपिनियन अनुसार, ये लैंग्वेज रिसर्च की नहीं होती है. रिसर्चर विल बी राइटिंग रिसर्चर एज अ थर्ड पर्सन. यू कांट राइट आई 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 आई, मैं नहीं लिख सकते रिसर्च की लैंग्वेज में. वेदर रिसर्चर हिमसेल्फ इज सेटिस्फाइड फॉर हिज वर्क, आप खुद अपना जज करें आपका कार्य ठीक है. थर्ड ड्राफ्ट फाइनल टचेस टू डॉक्यूमेंटेशन, फिर एक 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 चीज को डॉक्यूमेंट्स को चेक करो सही तरीके से मैंने सारी बातें उठाई है लिखी है शामिल की है. टू मेक रिपोर्टिंग अथॉरिटेटिव, क्योंकि डॉक्यूमेंट के आधार से आपका रिपोर्ट माना जाएगा स्वीकारा जाएगा अथॉरिटेटिव, लोग मानेंगे स्वीकार करेंगे. और आप जब डिक्लेयर कर रहे हो कुछ उसमें आपकी बातें, तो उसके पीछे अथॉरिटी आप अनुभव करेंगे जब आपने डॉक्यूमेंट्स सही उसमें, ये नहीं इन्होंने मुझे कहा था ना इसलिए मैंने कर लिया, ऐसे नहीं. हर डॉक्यूमेंट का एक स्वीकृत मान्यता प्राप्त एक बेस होता है, उस बेस के आधार से आपको लेना है. टू इंक्लूड इनकंक्लूसिव नेगेटिव रिजल्ट्स इन द रिपोर्ट, अगर कोई रिपोर्ट आपका उसमें कंक्लूजन कोई नेगेटिव आया नतीजा कुछ भी, वो भी आपको लज्जा नहीं करनी है, पर वो भी शामिल बात एज इट इज करनी है. यानी अपना पर्सनल ओपिनियन उसमें नहीं डालना है. डोंट बी सब्जेक्टिव रिपोर्ट लिखते समय. इन फ्यूचर सम फर्दर रिसर्च कैन बी डन इन फ्यूचर, अगर कोई बात आपके रिजल्ट में सही नहीं भी आई है तो आगे वाला रिसर्चर भविष्य में जो आपका ये पढ़ेगा वो उस पर से उसका दूसरा आगे रिसर्च करके उसका कंक्लूजन डिराइव करेगा. अब ये ऑर्गेनाइजेशन पार्ट था, अभी सेकेंड पार्ट ऑफ द रिपोर्ट. राइटअप एंड डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन तो फुट नोट्स वगैरह वो तो बात आ गई. रिपोर्ट राइटिंग इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटी, इट रिक्वायर्स कंसिडरेबल थॉट एफर्ट पेशेंस पेनिट्रेशन डेटा एनालिसिस प्रॉपर अप्रोच टू द प्रॉब्लम अ वास्ट अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन एंड प्लानिंग इज रिक्वायर्ड. सम स्टैंडर्ड क्राइटेरियन एंड गाइडलाइंस ऑफ राइटिंग रिपोर्ट आर लेवल ऑफ, कौन कौन से क्राइटेरिया, लेवल ऑफ रीडर्स, पर्पज ऑफ रिसर्च, मीडियम ऑफ राइटिंग स्टाइल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट. आप स्वयं अपने अंदर में कितना एथिकली जिम्मेदार होकर के रिपोर्ट लिख रहे हो. अभी रिपोर्ट में कोई कोई रिसर्च में डायग्राम्स भी शामिल होते हैं, तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में ये बार डायग्राम बताया है, बार दंड रेखा, तो इसमें क्या है देखो आपस में इन सभी लकीरों के मध्य चौड़ाई समान है, केवल ऊंचाई में अंतर है, इसलिए इसको वन डायमेंशनल कहा है, क्योंकि यहां क्या मापी जा रही है, केवल ऊंचाई मापी जा रही है. ठीक है, ओके. अगर यहां ऊंचाई भी होती और लंबाई भी होती तो इसको टू डायमेंशनल कहते हैं. ठीक है, इसी तरह डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टू डायमेंशनल डायग्राम, रेक्टेंगल्स स्क्वायर्स एंड सर्कल्स, जिसको द्विविमा चित्र समकोण चतुर्भुज भी कहते हैं. तो आपके सामने ये डेटा दिए टेबल में और उनको आपने क्या किया है डायग्राम में फिट किए हैं कि कितने परसेंटेज में नेपाल में ग्रांट दी गई, कितना भूटान को दी गई एवं कितनी दूसरों को ग्रांट दी गई, वो इसमें एक अपनी किताब में ये बताए हुए एग्जाम्पल दिया हुआ है. तो समझाने के लिए मैं केवल ये आपको डिस्प्ले यहां कर रही हूं. तो इस प्रोपोर्शन को देख करके कहां मैं एक पेज पढ़ूं पूरा इसका एक्सप्लेनेशन और कहां मैं इस डायग्राम को देख करके स्पष्ट हो गया. तो डायग्राम क्या करता है, मैसेज कन्वे करता है, देखने से ही संदेश क्लियर हो जाता है कि क्या हम कहना चाहते हैं. और इससे क्या होता है, इस तरह ड्रॉ करने से उसको एक प्रमाण मिल जाता है. तो डायग्राम क्या करता है, आपके आइडियाज को एक प्रमाण देता है ऑथेंटिक प्रमाण देता है। तो इसके डायग्राम के विभिन्न प्रकार बताए हैं। इसी टू डायमेंशनल में पाई डायग्राम भी बताया है, सर्कुलर और पाई डायग्राम भी बताया है, जिसमें भारत के अंदर कितनी कैनल्स गवर्नमेंट की है, टैंक्स कितने हैं, कुएं कितने हैं, ट्यूबवेल्स कितनी है, एवं अधर बाकी की जमीन क्या है ना। तो ये सारे हमें हेल्प करते। इसी तरह थ्री डायमेंशनल में क्यूब्स डायग्राम, सिलेंडर्स एंड स्फीयर्स, ये तीन प्रकार है। तो यहां पर आपको एक प्रकार बताया गया है। यहां मिल ओनर, मिल का मालिक एवं वर्कर दोनों की इनकम का एक प्रतीक बताया गया है। तो इसके तीन, थ्री डायमेंशनल का मतलब यहां तीन बाजू इसकी मेजर की गई है, थ्री साइड्स, इसलिए इसको थ्री डायमेंशनल। तो ये अलग अलग तरीके हैं। इसी तरह पिक्टोग्राम एंड कार्टोग्राम्स भी होते हैं, तो जिसमें व्यक्ति का पिक्चर होता है और उसके हाथ में कुछ निशानी बताई जाती है। तो ये वर्कर्स की निशानी है, उनके हाथ में इंस्ट्रूमेंट्स है, औजार है, ठीक है। तो ये भी एक डिस्प्ले करने का तरीका है। अब आपका जैसा डायग्राम, आपका जैसा रिसर्च होगा, कहीं इनकी जरूरत हो कहीं न भी हो, एज पर। इसी तरह ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अपनी किताब में दिया है। यहां पर ये जो पहला ग्राफ जो है हिस्टोग्राम, इसमें ओरिजिनल किताब में ही इस ड्राइंग में थोड़ी मिस्टेक थी, जिसमें जैसे यहां 50 के नीचे आपके ये जो टेबल दिया ना नीचे, तो 50 के नीचे इसका फिगर आता है 153, राइट है ना। तो उस अनुसार इसमें स्केल नहीं दिखाया है, तो 50 के नीचे इसमें लकीर होनी चाहिए बीच में, पर है नहीं। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, दोबारा कभी हम इसको करेक्ट कर लेंगे। पर हिस्टोग्राम कैसा होता है, एक सैंपल आपको हमने दिखा दिया है। आप कहेंगे एग्जाम में क्या ऐसा पूछेंगे, खास तो नहीं पूछते, पर फिर भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एक बार पूछा है, तो आप अटेम्प्ट करना चाहें, अगर एक्सपर्ट है इसमें तो यू कैन अटेम्प्ट। इसी तरह दूसरा एक प्रकार है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के डायग्राम का, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो इसमें क्या है, वही हिस्टोग्राम है ना, हिस्टोग्राम के सेंट्रल बिंदु को आप देख रहे हैं, हर जगह सेंट्रल बिंदु को जोड़ लिया गया है, तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहा जाता है। फिर थर्ड है स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व। अगर आपने उसमें से हिस्टोग्राम निकाल दिया और सीधे डायरेक्ट ही पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, तो इसको कहते हैं स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व। फिर चौथा है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, या उसको ओगीव भी कहते हैं। इसमें लेफ्ट टू राइट राइजिंग कर्व बताया है, ऐसे ही फॉलिंग कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोनों प्रकार के इसमें कर्व होते हैं, जिसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पूरा हुआ। अब प्रिलिमिनरी सेक्शन एंड टेक्स्ट। तो प्रिलिमिनरी सेक्शन में फॉर्म एंड स्टाइल ऑफ रिसर्च रिपोर्ट आर बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल्स ऑफ क्लैरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेशन, एंड रिसर्चर शुड बी फैमिलियर विद देम टू कम्युनिकेट हिज आइडिया इफेक्टिवली। द प्रिलिमिनरी सेक्शन शुड इंक्लूड, जो आपको गुप्ता भाई ने कल भी बताया होगा डेजर्टेशन में, कि फर्स्ट पार्ट में टाइटल क्या है आपका, टाइटल पेज है ना। फिर नेम ऑफ द कैंडिडेट, नेम ऑफ द फैकल्टी, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, एन अप्रूवल शीट ऑफ द सुपरवाइजर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कि आपने, आपको अप्रूवल मिली हुई है कि आप इस विषय पर डेजर्टेशन लिखेंगे, राइट। ये सारा बिगिनिंग में सारा आपको करना है। किसी ने सैंपल जाकर देखा आज वहां अशोक भाई के वहां, देखा डेजर्टेशन का जो लास्ट ईयर का, यू आप टाइम निकाल के आगे पीछे कभी भी जाकर के थोड़ा देखना सैंपल, वहां आप शुरू शुरू में डेजर्टेशन प्रोजेक्ट तो आपने किया ही है, डेजर्टेशन में दो तीन पेज और थोड़े ऐड होते, गाइड का नाम होगा, फिर ये अप्रूवल शीट होगी शायद, ये एक दो पेजेस कुछ हाँ थोड़ा सा. तो डेट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड अप्रूवल शीट ऑफ द सुपरवाइजर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी मे बी ये गाइड के लिए बताया. तो गाइड की आप सिग्नेचर लेंगे, उसका स्टैंप लेंगे, वो भी आपको पेज वहां जोड़ना होगा. फिर पंड्यमणि भाई आपको अप्रूवल भेजेंगे कि हाँ इसी विषय पर आपको अलाउड है रिसर्च करना, तो वो भी पेपर आप उसमें जोड़ेंगे. एक्नॉलेजमेंट्स, आभार दर्शन, किन किन लोगों ने आपको हेल्प किया है उस कार्य में. फिर मैटर ऑफ कर्टसी, प्रीफेस कंटेनिंग इनिशियल रिमार्क्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल वगैरह की सारिणी, वो भी आप टेबुलेशन भी वहीं बताएंगे. अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द रिपोर्ट टू लोकेट ईच सेक्शन ऑफ इट, कि आपके पूरे रिसर्च रिपोर्ट में कहां कहां कौन कौन सी बात का मेंशन किया गया है, उसकी एक एक ऊपर ऊपर से थोड़ी रूपरेखा बताना है. लिस्ट ऑफ टेबल्स देना है, फिगर्स फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द रिपोर्ट. अब राइटिंग स्टाइल कैसी हो, रिपोर्ट शुड बी क्लियर, इजी टू रीड एंड एक्यूरेट. द स्टाइल शुड कवर क्लियर प्रेजेंटेशन, कमांड ओवर लैंग्वेज, इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइडियाज, रिपीटेशन शुड बी अवॉइडेड. रिपीटेशन कौन करेगा अपने रिपोर्ट में, जिसके पास लिखने के लिए मैटर कम होगी, खजाना कम होगा, वो अलग हो गई बात, वो अलग बात होगी. वो तो लिंक जोड़ने के लिए आपने थोड़ा सा बताया है ना, वो बात अलग हुई. ऑब्जेक्टिविटी, रीडर कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट्स, चॉइस ऑफ राइटिंग स्टाइल. तो रीडर को ध्यान में रखते हुए आपने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, कितने फैक्ट्स बताए हैं और कितने आप ऑब्जेक्टिव हो, अपना कहीं भी पर्सनल व्यू उसमें जोड़ना नहीं है. कंटेंट ऑफ ए रिपोर्ट, फाइव सेक्शंस, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, रिपोर्ट में क्या क्या हो, एक तो प्रॉब्लम के बारे में, स्टडी डिजाइन, प्रोसीजर, किस मेथड से आपने इसको तैयार किया है, सैंपलिंग मेथड, मेजरमेंट, डेटा कलेक्शन इत्यादि, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन, ये सारे इसके रिपोर्ट के पार्ट्स हैं. समरी ऑफ फाइंडिंग्स, बिब्लियोग्राफी टू एक्नॉलेज द फैक्ट्स एंड आइडियाज बोरोड टू डिस्टिंग्विश कॉन्ट्रीब्यूशन of researcher and of others, कि आपने इन सभी के लिटरेचर को पढ़ा, उसमें से ये डिराइव किया है और उस पर से आपका अपना रिसर्च क्या हुआ, क्या आपने फाइंडिंग्स निकाले हैं, वो आप बताएंगे. ठीक है, तो इस तरह से इस चैप्टर को भी आपको दो तरह से उपयोगी है. एक तो रिपोर्ट की क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स इस पर पूछते हैं, या इसी प्रश्न को दूसरे शब्दों में पूछते हैं तो थोड़े से वर्डिंग्स चेंज करके, और दूसरी बात ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पर आ सकता है इसमें से, और तीसरी बात यही चैप्टर 5 आपको डेजर्टेशन लिखते समय उसकी मेथोडोलॉजी भी दर्शाता है. ठीक है, तो ये यहां पर अपना 5th चैप्टर पूरा हुआ है. क्वेश्चंस इसके रिलेटेड जो है मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं आपको, तैयार करके ही दे दिए हैं. 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर एंड 5th चैप्टर, तीनों चैप्टर के आपको आंसर्स दिए हुए हैं, आप उन्हें लर्न करें. इसके अलावा भी कोई आंसर आप तैयार करना चाहते हैं, यू आर फ्री. हमने जो आपको आंसर दिए, अगर उसमें भी आप बेहतर क्वालिटी बनाना चाहते हैं, यू आर फ्री. ये आपको ऑन एन एवरेज आंसर्स तैयार किए हैं, और थोड़े अच्छी अच्छी बातें, कुछ गहरी बातें भी उसमें शामिल किए, यदि कोई डिटेल में लिखना चाहे तो. ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बात कि स्टैटिस्टिक्स के ये जो 5 चैप्टर हैं उसमें 3rd, 4th एंड 5th, कोई मुझे पूछते हैं क्या केवल 3 चैप्टर मैंने तैयार किए तो मैं पास हो जाऊंगा. आपका पेपर 75 मार्क्स का है ना, तो इसमें से 60 to 65 मार्क्स तक का तो जरूर आता ही है. पर फिर भी रिस्क न लेकर के हमारा आपसे निवेदन है कि आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास इंटरवल जरूर करें, और अगर कर सकते हैं तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी करें। ठीक है, अभी इस बार इन्होंने मॉडल पेपर दिया है, इस बार कल देंगे सो वो तो मालूम है लास्ट ईयर वाला है, पर लास्ट ईयर के पेपर में एक मिनट आपके ध्यान में देती हूँ, चैप्टर टू लगभग नहीं शामिल किया है उन्होंने, खाली कुर्टोसिस स्क्यूनेस एक जगह कहीं थोड़ा बहुत कुछ पूछा है एंड स्कैटर डायग्राम वो थोड़ा सा पूछा है, बाकी कुछ भी उन्होंने पूछा नहीं था। जो मॉडल पेपर भी उन्होंने लास्ट ईयर दिया था विद्यार्थियों को, ये तो एनुअल पेपर आपको दिया है, पर उनको मॉडल पेपर दिया था उसमें चैप्टर टू शामिल नहीं था। बस यही जो मैंने कहा ना स्क्यूनेस कुर्टोसिस का मीनिंग एंड स्कैटर डायग्राम, बस और कुछ खास पूछा नहीं था। पर मैं नहीं समझती हूँ कि इस साल वो लोग उसको छोड़ देंगे, इसलिए एकदम आंख बंद नहीं रखना। तो आप तीन चैप्टर तो थरली करके ही जाएं, चैप्टर वन भी करके जाएं, तो चार चैप्टर में से तो जरूर आपको सवाल के जवाब फुल 75 मार्क्स का तो मटेरियल मिल ही जाएगा। और फिर भी सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, विषय के ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं डिस्पर्सन क्या है नहीं जानती, डेविएशन क्या है नहीं जानती, तो वो जो आपके अंदर खालीपन रहेगा वो खालीपन क्या करेगा, कॉन्फिडेंस नहीं देगा। और मानो आपका कोई डेजर्टेशन का सब्जेक्ट क्या है, अगर उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का उपयोग है तो भी तो आपको थोड़ा बहुत सीखना चाहिए। कुछ बात है जानकारी ले लो, चैप्टर टू की जानकारी ले लो, समझ ले लो, अंडरस्टैंडिंग ले लो, हाँ ठीक है, आप सेकंड चॉइस में रखो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं या न करूं, तैयारी करके एग्जाम में जाइए, बाकी आप चॉइस भले आपकी दूसरे सवालों के लिए रखो, और अगर इन द सर्कमस्टेंस आपको जरूरत है तो उसकी नहीं होगा, खाली तीन चैप्टर में नहीं होगा, चार चैप्टर तो कम से कम करने ही होंगे आपको। ये इसीलिए आपको पहले से ही हम बता देते हैं कि इतना अंधेरे में नहीं रहना, आप चार चैप्टर तो आपको करने ही होंगे। पर अभी आपके पास मटेरियल तो क्वेश्चन आंसर के रूप में पांचों चैप्टर का है, वो मैथमेटिकल पार्ट को छोड़ दो, मैथमेटिकल पार्ट की बात छोड़ दो, दूसरी बात पर एकदम डायरेक्ट ना बहन, वैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करके इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ अच्छी बात एक याद आ गई, मेरे को कई भाई बहनों ने पूछा कि क्या हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा, नो दैट मेथड इज नॉट द पैटर्न ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। आपको सीधा पूछेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 15 मार्क्स, या कहेंगे मीडियन के व्हाट इज द मीडियन हाउ टू फाइंड इट, ये नहीं कहेंगे कि ये टेबल दिया है अब इससे मीडियन फाइंड आउट करो, टेबल वेबल वहां नहीं देंगे, टेबल आपको ही वहां तैयार, फॉर्मूला आपको नहीं देंगे, आपको ही फॉर्मूला याद करके वहां जाना है। ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर का पांड्यामणि भाई ने बताया था, सिंपल कैलकुलेटर कहीं जरूरत है तो यूज करने देते, साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जाकर नहीं ले जा सकते इस पेपर। ठीक है, दूसरी बात, आपको जो ये उत्तर तैयार करके मिले हैं, आप में से कोई कम से कम चुपचाप बैठ करके पांच बार लिखने का अभ्यास करे, तारी बात अलग छे, तू तारी बात नहीं कर ना, जनरल निवाद छे, तुम अपने ऊपर नहीं लो ना, क्यों लिखोगे, तब बुद्धि में लिखते समय आंख और बुद्धि दोनों देखते हैं, समझना स्टैटिस्टिक्स अलग बात है, लिखने को आना चाहिए, लिखने को आना चाहिए। आपने एक भी बार नहीं लिखा है और अगर कॉन्फिडेंस से चले जाते हो एग्जाम में, उस समय आपके हैपेजार्ड रहेंगे, विचार सारे अस्त व्यस्त रहेंगे। ना ना ना, लिखना आना चाहिए। जिसकी लिखने की हैबिट होगी उसकी स्पीड होगी, नहीं तो क्वेश्चन पेपर छोड़कर आओगे। और इस उम्र में आप लोगों को तो बहुत साल हो गए ना पढ़े हुए, इसलिए सब अंग आपके आलसी है, ऑल ऑर्गन्स आर लेजी। और पहले लंबे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए और टाइमिंग डिवाइड करो क्वेश्चन वाइज, किस क्वेश्चन के लिए कितना मिनट, किस क्वेश्चन के लिए कितना मिनट, किस क्वेश्चन के लिए कितना मिनट। जो ये प्रिपरेशन करता है वही कंप्लीट करके आएगा। तो 5 बार लिखने का अभ्यास करना ही है। मुरली की पॉइंट्स लिख रहे हो, ऐसे समझ के लिखना, उस प्यार से लिखना। कंप्लेन नहीं करो कैसे करूं, मेरी बुद्धि काम नहीं करती। अरे बुद्धि अपने आप काम करेगी, आप बुद्धि के कमांडर बनो, लिखना शुरू करो। अच्छा, अब आपको टिप्स थोड़ी सी दे देते हैं। स्कैटर डायग्राम में प्रथम डायग्राम क्या है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड राइजिंग, बाएं से दाएं की ओर, कब कहां जा रहा है राइजिंग। तो दो वेरिएबल के बीच में, प्राइस एंड सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन। क्या सुना वीरेंद्र भाई, डायग्राम कहां से कहां जा रहा है, बाएं से दाएं ओर। बाएं से करो मेरे साथ ऐसे एक्शन करोगे ना, याद रह जाए, बाएं से दाएं ओर, राइट। सप्लाई एंड प्राइस के बीच में पॉजिटिव 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 रिलेशन, ठीक है, याद रह गया। ओके, सेकंड डायग्राम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फॉलिंग, लेफ्ट टू राइट फॉलिंग। तो सेकंड डायग्राम मीन्स मैं सीढ़ी नीचे उतर रहा हूं, यहां से स्टेयरकेस नीचे उतर रहा हूं, फॉलिंग, राइट। फर्स्ट डायग्राम में मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूं, हा? और उसमें डिमांड एंड प्राइस का इनवर्स रिलेशन, ठीक है। थर्ड डायग्राम में प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन में, सेम अनुपात में, सेम डायग्राम है। फर्स्ट इज राइजिंग, सेकंड इज फॉलिंग। जो फर्स्ट वैसा ही थर्ड है, जो सेकंड है वैसा ही फोर्थ डायग्राम है, कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। केवल एडिशन क्या है, सेकंड परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन, फोर्थ परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन। शब्द क्या है, परफेक्ट जोड़ने का है, शेप सेम, इनवर्स और पॉजिटिव रिलेशनशिप चारों डायग्राम का आपस में वही है, ठीक हो गई बात। डिराइव किया, कंक्लूजन डिराइव किया, बुद्धि में बैठा। पांचवा क्या है, नॉन लीनियर कर्व, ठीक है, नॉन लीनियर, क्योंकि दोनों वेरिएबल का आपस में कोरिलेशन आगे पीछे घटता बढ़ता है। और लास्ट छठा डायग्राम में क्या है, समांतर स्ट्रेट लाइन, डॉट 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 डॉट, नो कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन। अभी ये चित्र याद आ गया हमें, ये चित्र याद आ गया, तो ड्रॉ करके उसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं या नहीं। दादी जी का चित्र याद आ गया, मनमोहिनी दीदी जी का चित्र याद आ गया, जगदीश भाई का चित्र याद आ गया, मनोहर दादी का आ गया, मम्मा बाबा का याद आ गया, तो सरल हो गया ना, हा? पहले मालूम नहीं था, अब मालूम हो गया। ऐसे ही डायग्राम वन मालूम हो गया, टू मालूम हो गया, थ्री मालूम हो गया, फोर मालूम हो गया, फिफ्थ मालूम हो गया, सिक्स मालूम हो गया, आ गया, हो गई बात। अच्छा, फिर अभी स्क्यूनेस पे, जब दोनों साइड के फ्रीक्वेंसी समान तरीके से पहले बढ़ती है फिर घटती है, तो मीन मीडियन सेम है, ठीक है। फिर सेकेंड डायग्राम, राइट साइड पूंछ लंबा है, लेफ्ट साइड कम है, तो ये पॉजिटिव स्क्यूनेस। और ये पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या दिखाता है हमें? विषमता, राइट है। तो थर्ड डायग्राम क्या है? लेफ्ट साइड लंबा पूंछ, राइट साइड कम, तो वो नेगेटिव स्क्यूनेस का प्रमाण देता है। ओवर। अब कुर्टोसिस, तो पहले यूं करके टॉप वाला डायग्राम, कुर्टोसिस शिखर पिक पॉइंट, जहां कुर्टोसिस ज्यादा है, विषमता ज्यादा है, उसको नेगेटिव स्क्यूनेस कुर्टोसिस कहा है, राइट। फिर बीच वाला है समता वाला, समान, इक्वल, एंड थर्ड वाला था वो अधिक फ्लैट वाला था, वो पॉजिटिव कुर्टोसिस वाला था, जिसको लेप्टोकुर्टिक, फिर मेसोकुर्टिक एंड प्लेटिकुर्टिक, ये तीन नाम दे दिए, जैसे विंध्याचल, अरुणाचल, सापुतारा, ये सारे हाँ पर्वतों के भारत के नाम है, वैसे हमें ये तीन ग्राफ मिले हैं, तो तीन ग्राफ के तीन नाम दे देने के, हो गई ना बात, क्लियर हो गई ना ग्राफों की बात, ओके। तो इस तरह से इजीली सरलता से कोई रात को उठा करके भी पूछे कुर्टोसिस के कौन से तीन डायग्राम है, याद आ गया। स्कैटर डायग्राम के कौन से छह डायग्राम है, याद आ गया। स्क्यूनेस के कौन से तीन डायग्राम है, याद आ गया, सरल, ओके। तो बी पॉजिटिव विथ ऑल द टॉपिक्स, और जैसे भूख लगती है ना ऐसे खाओ इस खुराक को, ये जो ज्ञान है ना स्टैटिस्टिक्स का ज्ञान है ना, इसको भोजन समझो, और भोजन समझ करके जितना खाओगे उतना आपको इसकी दिव्यता, इस सब्जेक्ट की भी दिव्यता आपके बुद्धि में प्रवेश करेगी। जो विद्यार्थी नेगेटिव सोचता है उसके पास विद्या नहीं आती, पहले ही बोरिंग है, सब्जेक्ट ये है, फिर हमने बहुत साल से पढ़ना बंद कर दिया है, लैंग्वेज तो देखो हिंदी में आवृत्ति बोलते हैं इसको, अब तुम्हारा क्या कहे आवृत्ति का, तो कुछ निवृत्ति कहो, प्रवृत्ति कहो या आवृत्ति कहो, तुम्हारा क्या गया, लेट देम गिव एनी नेम, आप तो फिर क्या खुशी खुशी स्वीकार करो ना, आवृत्ति वितरण चलेगा, नो प्रॉब्लम। विषमता कहा, किसको कहा विषमता, स्क्यूनेस को, राइट है। कुर्टोसिस को क्या कहा, विकृति कहा, भले कहो है डेटा में विकृति है इसलिए कहा, अगर आपके व्यवहार में विकृति है, आप कड़वे हो तो लोग कड़वे कहेंगे, आप मीठे हो तो लोग, तो उन डेटा में क्या है, तो इसलिए उसको विकृति नाम मिला इंग्लिश में, उसको कुर्टोसिस का अपना क्या गया, भले कहे, ठीक है ना।
कुर्टोसिस के नाम याद रखने के लिए लैंप याद रखेंगे,
हाँ 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 हाँ, अपनी बुद्धि अनुसार आपको जिस रीति से जो याद रहे ना, एक उसका सिग्नल अंदर बुद्धि में बिठा लो, तो यू कैन एज यू लाइक सरल। तो इस तरह से पूरा पोर्शन आप रिवाइज कर ले और आपस में डिस्कस कर ले आपस में, जैसे हमारे मधुबन के कुछ भाई हैं या आठ भाई साथ में कर रहे हैं, तो आपस में शेयरिंग करें, डिस्कस करें, और कभी भी किसी को भी कोई भी डिफिकल्टी हो, नर्वस नहीं होना, कभी भी हताश नहीं होना, आप पास होंगे, जरूर पास होंगे, आपके पास सब खजाना है, केवल आपको कलम उठानी है। हाँ, जिसको भी जो भी डिफिकल्टी हो पूछना है आप पूछ सकते हैं, कोई ख्याल न करो। इसके अलावा भी, आबू के अलावा भी कहीं कहीं से, भारत से भी मुझे पूछते हैं अपने बाकी के पीसीपी सेंटर के, जिसको खबर मिलती है, किसी को पता चलता है तो पूछते, भले पूछे, भगवान ने ज्ञान का खजाना दिया, बांटते रहो, सबको देते रहो, ठीक है। पर लर्निंग के लिए भूख लगनी चाहिए, सीखने के लिए भूख लगनी चाहिए, है ना। तो इसी शुभ भावना के साथ, और अभी मैं जा रही हूँ बंबई। एंटायर इकोनॉमिक्स का जब मैं पढ़ाई करती थी तब, तो सीक्रेट ये है कि मैंने 14 साल लौकिक में रहते हुए बाबा के लिए लौकिक पढ़ाई पढ़ी, बीए किया बाबा के लिए, एमए किया बाबा के लिए, दूसरा एमए किया बाबा के लिए, एमफिल किया बाबा के लिए, डीएचई किया बाबा के लिए, डीपेड किया बाबा के लिए, एंड अपने पैरों पर खड़े रहे क्योंकि पिताजी का सहयोग नहीं मिला तो हम कमाना शुरू किए, टीचिंग लाइन में गए, 16 वर्ष साथ साथ पढ़ाते रहे, पर ब्रह्मा कुमारी का जीवन भी साथ साथ मेरा चलता रहा, सवेरे क्लास करना करवाना, बंबई में कई सेंटरों पर कई ब्राह्मणों को बाबा ने निमित बना करके जगाया हुआ है, तो दोनों पार्ट मैं प्ले किया, इसलिए दोनों जगत के ज्ञान को जानती हूं, और 10 वर्ष की उम्र से ज्ञान लिया डायरेक्ट मम्मा बाबा से। तो मैंने जब स्टैटिस्टिक्स की मेरे को ऑफर मिली, आपको मैं क्या दिव्य अनुभव सुनाऊं, अंदर इतनी उछल इतनी उछल इतनी उछल कि पूरा ज्ञान मैं खा लूं स्टैटिस्टिक्स का, कहां कहां से मैंने कहां कहां गहराई में जाकर के इसके शब्द ढूंढे होंगे ट्रांसलेशन के लिए इंग्लिश टू हिंदी के, और इतनी गहराई में गई सब्जेक्ट के कि इसका मैं यह भी अर्थ समझू, ये भी अर्थ समझू, ये भी अर्थ समझू, और समझ करके मैंने कहा इन लोगों को, आप मुझे खड़ा कीजिए, मेरे को बाबा का दिव्य प्रकाश अनुभव हो रहा है, बाबा मेरे से इन भाई बहनों को स्टैटिस्टिक्स सिखवा रहा है, इनको सरल बनवा रहा है, आप मुझे पूरी बुक दीजिए सिखाने के लिए, मैं पूरी बुक इनको सिखा करके इनको इतना मालामाल कर दूं, इनको इतना परफेक्ट बना दूं इस सब्जेक्ट में, जितना इनको भय है, जितना इनको बोरिंग लगता है, जितना इनको डिफिकल्ट लगता है, उतना ही इनको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ज्ञान अपने आप अपनी जगह पवित्र है, वो स्टैटिस्टिक्स का हो, वो आध्यात्मिकता का हो, वो ज्योग्राफी का हो, वो मैथ्स का हो, ऑल सब्जेक्ट्स आर नॉलेज, और उसको आध्यात्मिक अर्थ में जब आप सीखोगे समझोगे तो एवरीथिंग इज, क्योंकि आपको रिसर्च करना है बाबा के टॉपिक्स पर, तो बाबा के टॉपिक्स पर रिसर्च करने के लिए साइंटिफिक प्रमाण तो स्टैटिस्टिक्स देगा ना, ये टूल्स देंगे आपको, आपका रिसर्च तब वैलिड माना जाएगा। इसलिए इस सब्जेक्ट को इस नजरिए से, इस पवित्र नजरिए से आप देखोगे तो बस यही शुभ भावना विद्या के प्रति मेरी है और सदा रहेगी, और नेक्स्ट बर्थ में भी मेरे साथ ये संस्कार चलेगा। ओम शांति।